जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज नमाज। प्यारे आका की आंखों की ठंडक है कल्बे शाहे मदीना की राहत नमाज कल्बे शाहे मदीना की राहत नमाज।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही मालूमाती और प्यारे से प्रोग्राम आए नमाज सीखे में। और आज मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको लेकर आए हैं एक बिल्कुल ही यूनिक जगह पर, बिल्कुल अलग जगह पर, और एक नई जगह पर हम ये प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने करनी है बहुत सारी बातें। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, हमारे आसपास आपको समंदर नज़र आ रहा है, और अभी हम यहाँ पर लॉन्च में मौजूद हैं, किश्ती में मौजूद हैं, और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है इस समंदर से मुतालिक, किश्ती से मुतालिक, किश्ती में नमाज पढ़ने के मसाइल क्या हैं, नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी किश्ती में, और चलती किश्ती में नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, खड़े होकर बैठकर नमाज़ पढ़ना, किबले रुख का तायुन वगैरह, बहुत सारी दीनी बातें आपके साथ इंशाल्लाह हमने शेयर करनी है। हमारे साथ रहिएगा, अव्वल तो आखिर आपने ये प्रोग्राम ज़रूर देखना है। लेकिन सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत नाजिल करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर समंदर में मौजूद हैं और एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। आपको हो सकता है कि आवाज़ भी आ रही होगी, थोड़ा शोर भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आस पास किश्तियों का और बोट्स का आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है, तो ये शोर भी हो रहा होगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके सामने कुछ मसाइल को शेयर करें जो मसाइल यहीं पर पेश आते हैं। जी हाँ, इसी लॉन्च पर ही पेश आते हैं, समंदर में वो मसाइल दरपेश होते हैं लोगों को, जो लोग किश्तियों का सफ़र करते हैं, बोट्स पर ट्रेवल करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं, इंशाल्लाह हमने उस हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, और नमाज पढ़ना ये मुसलमान पर फ़र्ज़ है। पांच वक्त की नमाज मुसलमान पर क्या है?
फ़र्ज़
है। जी हाँ, मुसलमान पर पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। आप दरिया में हो, आप समंदर में हो, आप सहरा में हो, आप रेगिस्तान में हो, या आप जंगलात में हो, ठीक है, या अपने घर पर हो, या सफ़र में हो, नमाज पढ़ना क्या है? नमाज पढ़ना क्या है? जी हाँ, नमाज माफ़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए नमाज पाबंदी से पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें नमाज पढ़ने के मामलात, इसी तरह अगर आप जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं तो जहाज़ पर सफ़र करने की भी तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। जहाज़ में हम नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, किबले का कैसे मालूम होगा, वहाँ तहारत के वज़ू के मामलात कैसे हैं, ये भी आपको तफसील मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से जो है, इसी तरह से जहाज़ में बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। यूं ही जो है किश्ती में नमाज़ पढ़ने के क्या मसाइल हैं, किश्ती में आप नमाज़ खड़े होकर पढ़ेंगे या बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये तफसील भी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं अगर घर पर आप नॉर्मल हालत में मौजूद हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर अगर बैठकर फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो फर्ज नमाज बैठकर हो जाएगी? भाई जोहर की चार फर्ज पढ़नी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है खड़े होकर नमाज पढ़ने की, आपके तैयार में बैठ कर नमाज पढ़ लेता हूँ, थोड़ी थकन हो रही, नमाज हो जाएगी? हैं, नहीं होगी नमाज। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि खड़े होकर फ़र्ज नमाज पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। तो फ़र्ज नमाज को खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने बैठ कर फ़र्ज नमाज पढ़ी तो नमाज नमाज नहीं होगी।
मेरा नाम मोहम्मद आलिन आज़ाद तारी है। यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल है कि क्या नफिल नमाज बैठकर हो जाएगी?
नफिल नमाज अगर बैठकर पढ़ेंगे तो नफिल नमाज हो जाएगी, लेकिन फ़र्ज नमाज अगर बैठकर पढ़ेंगे तो नहीं होगी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज के मसाइल सीखना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इन मसाइल को जहन में रखना, उनको सीखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी नमाजों को ज़ाया होने से बचा सकें। तो नमाज पढ़ना ये फ़र्ज है, इसे छोड़ने की इजाज़त नहीं है, खा अब समंदर में है या सहरा में है या रेगिस्तान में है। नमाज पढ़ना ज़रूरी है, समंदर में भी आप नमाज पढ़ेंगे लेकिन कैसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इनके मसाइल को सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये याद रखिए, अभी हम जो मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ ज़्यादातर यहीं के जो बच्चे हैं जो यहीं पर रहते हैं, यहीं आस पास ही रहते हैं और अक्सर इनको ट्रेवल रहता है, तो यकीन है नमाज का टाइम भी हो जाता है। चलती किश्ती में नमाज हो जाएगी या नहीं, यानी किश्ती चल रही है दरिया के बीच में, ठीक है, अब नमाज का टाइम हो गया है और नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी तो ज़रूरी है ना, अब नमाज पढ़नी भी है तो अब नमाज पढ़े कैसे? इसीलिए याद रखिए, उलमा ने ये मसला बताया है कि अगर किश्ती चल भी रही हो ना तो चलती किश्ती में भी नमाज पढ़ना जायज़ है, यानी अगर चलती किश्ती में आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी नमाज हो जाए। किश्ती को रोकना ज़रूरी नहीं है कि किश्ती को पहले रोकें फिर नमाज पढ़ें, ऐसा नहीं है। अगर आप किस दरिया के बीच में जा रहे हैं, किश्ती चल रही है तो और चलती किश्ती में भी आपने नमाज पढ़ ली, आपकी नमाज सही हो जाएगी।
यार किश्ती चलती हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है।
जी हाँ यासिर भाई, चलती किश्ती में भी खड़े होकर नमाज पढ़ना ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम घर पर नमाज पढ़ते हैं ना या मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो आप अगर किश्ती में भी नमाज पढ़ रहे हैं तब भी कैसे नमाज पढ़ेंगे? खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे।
खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो तो चक्कर आते हैं तो बैठ के पढ़ें।
हाँ देखें, अगर चक्कर आ रहे हैं ना, भाई किश्ती चल रही है, मिसाल के तौर पर हम किश्ती में मौजूद हैं, ये किश्ती चल रही है, ठीक है, आपने खड़े होकर नमाज पढ़नी है, अब आपको चक्कर आ रहे हैं, यार खड़े होकर नमाज पढ़ने से चक्कर आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर खड़े होकर चक्कर आ रहे हो ना तो फिर बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अरे समझ में आपको? अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने में चक्कर आ रहे हो तो बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं, बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन कब? जब आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है खड़े होकर नमाज पढ़ने में, तो फिर बैठ कर नमाज पढ़ने की आपको इजाज़त है।
समुंदर से मुतालिक हम एक मछली का वाक़या सुना है जो आप बता देंगे।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब दावत दी, अल्लाह के दीन की तरफ आने की दावत दी, तो उन्होंने आपकी नाफरमानी की, इनकार करने लगे, नाफरमानी की उन्होंने, तो आप जो है उनको अजाब से डरा कर फिर आप जो है किश्ती में सवार होकर जा रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन से नबी हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जी हाँ वो अल्लाह के नबी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो वो किश्ती में जा रहे थे, अब कश्ती में कुछ मसला हो गया तो कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। कहाँ डाल दिया?
दरिया में।
जी हाँ, इस तरह से दरिया में डाल दिया। अब क्या हुआ जनाब, एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने अपना मुंह खोल दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में तशरीफ़ ले गए। वो मछली किसके हुक्म से आई थी? जी हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आई थी वो मछली। और वो मछली जो है यूनुस अलैहिस्सलाम जब उसके पेट में गए, उसने आपको बग़ैर नुकसान पहुंचाए, उस मछली ने अपने पेट में रख लिया। कहाँ रख लिया?
पेट में।
अपने पेट में रख लिया, ठीक है। और 40 डेज तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 डेज तक 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कितने दिन तक रहे?
40।
कितने दिन तक रहे? 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे। और आपको वो मछली लेकर सफ़र करती रही, दिन हो रात हो। उस मछली का नाम पता है क्या था? नाम पता है? उस मछली का नाम था नजम। क्या नाम था?
नजम।
उस मछली का नाम क्या था?
नजम।
जी हाँ प्यारे बच्चों, उस मछली का नाम नजम था, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा। अब वो आपको लेकर ना समंदर में सफ़र करती रही, रात हो दिन हो, 40 दिन तक, 40 डेज तक वो आपको लेकर सफ़र करती रही। उसका नाम भी नजम था, ठीक है? उसके उस मछली का नाम क्या था?
नजम।
जी हाँ, नजम उसका नाम था। अब जनाब 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह पाक के हुक्म से वो मछली किनारे के पास आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर डाल दिया। बड़े आराम से उसने अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? किनारे पर डाल दिया। अब क्या हुआ, जब किनारे पर डाला ना, तो आपका जिस्म चूंकि बहुत कमज़ोर हो गया था, है ना, अल्लाह पाक ने आपके लिए एक कद्दू का दरख्त उगाया। कद्दू देखा आप लोगों ने? कद्दू का दरख्त उगाया अल्लाह ताला ने आपके लिए, और वो आपके ऊपर साया करता था, ठीक है? और इसके बाद एक बकरी आती थी रोज़ाना, आप उसका दूध पिया करते थे। आपकी स्किन जो है ना, बहुत ही नाजुक हो गई थी, बहुत ही नाजुक हो गई थी। तो आप वहीं पर फिर किनारे पर ही रहे, और इसके बाद जो है बकरी आती थी, उसका दूध आप नोश फरमाया करते थे, पिया करते थे उसका दूध। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपका जिस्म दोबारा अपनी नॉर्मल हालत पर आ गया। तो एक ऐसा वाकया है अल्लाह पाक ने जिसका जिक्र कुरान करीम में किया है, ठीक है? तो उससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। उसमें समंदर का भी जिक्र है, उसमें मछली का भी जिक्र है, और मछली तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ना। मछली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया। बल्कि कायनात में प्यारे बच्चों जो भी चीज़ें हैं ना, ये देखिए समंदर है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ज़मीन है, आसमान है, दरख्त हैं, और जानवर हैं, परिंदे हैं, ये सब अल्लाह ने किसके लिए पैदा किए हैं?
इंसानों के लिए।
इंसानों के लिए पैदा किए हैं, और अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जी हाँ, तो इंसान को अल्लाह की क्या करना चाहिए? अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये हम पर फ़र्ज़ है, ये हम पर लाजिम है कि अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। बहरहाल अभी हम यहाँ पर किश्ती में मौजूद हैं और किश्ती के मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? अगर और किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
कश्ती अगर किनारे पर खड़ी हो तो कश्ती पर नमाज पढ़े या नीचे उतर कर नमाज पढ़े?
हाँ, ये सवाल भी बड़ा अहम है कि किश्ती पर नमाज पढ़ेंगे या फिर उतर कर नमाज पढ़ेंगे। कब? जब आपकी किश्ती किनारे पर लगी हुई है, ठीक है, और बंधी हुई है, किश्ती को बांधा हुआ है, किनारे पर बंधी हुई है। अब आया कि आपको नीचे उतर कर नमाज पढ़नी है या किश्ती पर नमाज पढ़ सकते हैं। इस बारे में मसला ये है कि अगर आप किश्ती से उतरकर आसानी से किनारे पर जा सकते हैं, अगर आप किश्ती से उतरकर आसानी से किनारे पर जा सकते हैं, तो आप किश्ती पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कहाँ पढ़ेंगे? उतरकर किनारे पर नमाज पढ़नी है, ठीक है प्यारे बच्चों? उतरकर किनारे पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप देखते हैं कि उतरना पॉसिबल नहीं है, उतरने की इजाज़त नहीं है आपको, तो फिर किश्ती पर नमाज पढ़ेंगे। अगर उतरने वाली कोई सूरत ही नहीं है, आसपास गहरा गहरा पानी है, किनारे पर बंधी हुई है लेकिन आप उतर नहीं सकते हैं, गहरा गहरा पानी है, तो फिर तो किश्ती में नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मुमकिन है कि आप उतर कर जा सकते हैं किनारे पर, तो फिर किनारे पर ही नमाज पढ़ेंगे, ठीक है?
यूसुफ भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि किश्ती में जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं?
हाँ, ये भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, कि किश्ती में जमात से, भाई कोशिश तो करें कि जमात से ही नमाज पढ़ें। आप किश्ती में हो, जहाज़ में हो, या जो है वो दरिया में हो, रेगिस्तान में हो, जंगल में हो, जमात से नमाज पढ़ें, क्योंकि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा होता है, ठीक है? जमात से नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा होता है, इसीलिए बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके मसाइल को सीखना भी ज़रूरी है। ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اگر آپ جماعت کرواتے ہیں نا کشتی کے اندر, اگر آپ جماعت کروانا چاہیں, جتنی ہم نے شرائط بیان کر دی ہے نماز پڑھنے کے بارے میں, تو اس کے مطابق جو ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اگر جماعت سے نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا حضور, یہ بھی بتا دیں کہ مولوی صاحب دوسری کشتی میں اور باقی سارے لوگ دوسری کشتی میں, تو اس سے جماعت ہو سکتی ہے.
اچھا ہاں, یہ بھی صحیح بات ہے بھائی. اب دیکھیں مدنی چنے کے ناظرین, بڑا اچھا سوال پوچھا ہے فیضان رضا نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی میں امام صاحب ہیں اور باقی مقتدی دوسری کشتی کے اندر ہیں, اگر اس طرح سے جماعت کرنا چاہیں تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ بھی اہم ترین سوال ہے. تو اس میں تھوڑی سی صورت تفصیلی ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے صورت بنے گی کہ کچھ مقتدی جو ہیں وہ ایک کشتی میں ہوں اور امام صاحب اور کچھ مقتدی جو ہیں دوسری کشتی میں ہوں, تو آیا کہ جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں. آئیے ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ صورتحال کیسے بنے گی. ایک صورت وہ ہے کہ جماعت درست ہو جائے گی اور ایک صورت وہ ہے کہ جماعت درست نہیں ہو سکے گی. وہ صورت کون سی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے بچوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کشتی ہے اور یہاں پر یہ گویا کے ایک امام صاحب, ان کے ساتھ دو مقتدی موجود ہیں, اور وہاں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پیچھے بھی جو ہے تین مقتدی وہاں پر بھی موجود ہیں. تو اس صورت میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہیں, ان کی رسیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہیں, اگر وہ کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں گی اب تو یہ اقتدا درست ہے. جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ امام صاحب ہیں, پیچھے تو مقتدی ہیں اور دوسری کشتی میں جو ہے مزید مقتدی یعنی نماز پڑھنے والے موجود ہیں, اس صورت میں تو نماز صحیح ہو جائے گی جبکہ یہ دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ بندھی ہوئی نہ ہوتی یعنی الگ الگ ہوتی, آپس میں بندھی ہوئی نہ ہوتی, تو اس صورت میں جو اس کشتی میں نماز پڑھنے والے ہیں نا ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی, یعنی وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, تو جماعت درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کشتیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. دونوں کشتیاں اگر ملی ہوئی ہوں گی تو جماعت درست ہوگی, یعنی جو اس لانچ میں موجود ہیں اس کشتی میں موجود ہیں وہ تو اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے, اور اگر دونوں کشتیاں آپس میں بندھی ہوئی نہیں ہوں گی تو پھر ان کا جو ہے اس جماعت میں شامل ہونا درست نہیں ہوگا, وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ اگر دو یا تین کشتیاں ہیں اور ان میں موجود لوگ اگر نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تو ان کی جماعت کا آپس میں کیا طریقہ کار ہوگا, ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے. تو پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ کشتی میں نماز سے متعلق ہم مسائل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی میں نماز سے متعلق مسائل کیا کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں, بعض اوقات وضو کے حوالے سے بھی مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں, لیکن اگر سمندر میں تو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا نا, چاروں طرف پانی ہی پانی ہے, ہے نا بھائی. وضو کا مسئلہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں پانی نہ ہو, اور ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈس میں بتایا بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, تیمم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں, تیمم کرتے ہیں, اور تیمم کا ہم نے طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا. بہرحال یہ جو کشتیاں ہیں نا اس میں وضو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی بھی ہیں, عام طور پر تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں نا, سفر کر رہے ہیں, راستے میں کہیں جا رہے ہیں, تو پھر اس دوران وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے, ہم بعد میں قضا کر لیں گے, تو اس کی تو اجازت نہیں ملے گی نا بھائی. اگر آپ کشتی میں جا رہے ہیں, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, تو نماز تو معاف نہیں ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں جب آپ کشتی میں بھی جا رہے ہیں, دیکھیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی, لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عمل جتنا مشکل ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. اب اگر آپ یہاں پر جو ہے کشتی میں وضو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا ہوگا, ہے نا, تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی, لیکن بہرحال بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو کشتیوں میں ٹریول کرتے ہیں, مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں, کام سے جا رہے ہیں, کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے, تو ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا کہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑیں. نماز ان کو پڑھنی پڑے گی, جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے उनको नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा, नमाज छोड़ने की इजाज़त हमें नहीं मिलेगी।
यूसुफ भाई यही बता दें कि कश्ती में नफिल नमाज बैठकर हो जाएगी?
हाँ देखें, नफिल नमाज जैसे हम अपने घर में या मस्जिद में नमाज पढ़ लें तो नफिल नमाज जैसे आप बैठकर पढ़ सकते हैं ना, तो इसी तरह कश्ती में भी अगर नफिल नमाज पढ़ लें तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे तहज्जुद पढ़ लें, इशराक चाश पढ़ लें, तो कोई नफिल नमाज अगर आप बैठकर पढ़ना चाहें, या जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ ही जो नफिल नमाजें होती हैं, जैसे जोहर की नमाज में आखिर में दो नफल होती हैं, मगरिब की नमाज में आखिर में दो नफल होती हैं, तो नफल नमाज अगर आप बैठकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं।
ये भी बता दें समंदर का पानी घर पे ले जा सकते हैं?
देखिए समंदर का पानी वैसे किसी की मिल्कियत तो नहीं है ना, ये किसी की मिल्कियत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप ले जाना चाहते हैं, बोतल भर ली, कूलर भर लिया, तो भाई बल्कि मछलियाँ भी तो पकड़ के ले जाते हैं यहाँ से, है ना। आप ये पूछें कि मछलियाँ पकड़ कर घर ले जा सकते हैं या नहीं, तो बहरहाल अगर आप जो है मछलियाँ पकड़ कर घर ले जाना चाहें, खाना चाहें, तो वो भी खा सकते हैं। अगर आप पानी उठा के ले जाना चाहें, घर पे यूज़ करना चाहें, वो भी ले जा सकते हैं। दरिया का पानी है तो दरिया का पानी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसमें गौरज नहीं है। बल्कि ऊपर अगर आपको परिंदे नज़र आ रहे हो ना, तो परिंदे को भी आप अगर आपने शिकार कर लिया उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, आज का एपिसोड आपने मुलाहज़ा किया, आज हमने कश्ती से मुतालिक, कश्ती में नमाज पढ़ने के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें सीखने की और सिखाने की कोशिश की है, और हम कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत बातें और भी रह गई हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको कश्ती और समंदर से मुतालिक बहुत अहम अहम बातें बतानी है। तो मदनी चैनल देखते रहिए, और YouTube पर जो किड्स मदनी चैनल का चैनल बना हुआ है वहाँ पर आप आएँ, नमाज सीखें प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। Facebook पर भी किड्स मदनी चैनल का पेज मौजूद है, आप वहाँ पर भी आएँ, नमाज सीखें, प्रोग्राम के जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम इन बातों को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
से दिल वाएगी तुमको जन्नत नमाज।